வந்தே ஜெகம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. उपस्थित प्रिय आत्मा, आज आप सिर्फ किसी विशेष काम से नहीं आ सके तो बेहतर माइंड वाइज इन वजन से पूछा कि भाई आप लोग किस विषय को सुनना चाहते हैं, तो हम तीनों ने मिलकर एक रामायण की चौपाई उसका आधार लेकर आपके सामने विचार करूंगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अभजस बिन्हा, आपका जो संस्कार है ये आपको परिवार से प्राप्त होता है, इसलिए हमें दूसरों के संस्कार की नकल नहीं करनी है। खान पान शादी ब्याह की बात करेंगे तो हर समाज का अपना नियम है, आप जिस समाज के हैं आपके माता पिता जिस समाज से संबंधित है वह संस्कार आपको मिलेगा। इसलिए जो आपको विधि की बात कर रहा हूं कई अर्थ है, प्रथम तो यह है आप अपने धर्म के अनुसार संस्कार बांध, आप हिंदू हैं तो पूरी तरह हिंदू रहे, आप मुस्लिम हैं तो पूरी तरह मुस्लिम बने, ईसाई है तो पूरी तरह ईसाई बने, कोई आधा हिंदू है आधा ईसाई है थोड़ा ये है थोड़ा वो है तो मुश्किल हो जाए। हमें अपने संस्कार में आस्था रख करके सबका आदर करना, अगर हम संस्कार छोड़ देंगे तो कहेंगे भी नहीं। शंकराचार्य जी ने भी कहा है दूध कीमती है लेकिन मछली का संस्कार पानी में रहने का है, पानी में से निकाल कर दूध में रखोगे तो आधे घंटे के बाद स्वास्थ्य खत्म हो जाएगी। भले दूध कीमती है लेकिन मछली का रहने का संस्कार पानी। आप अपनी जगह ठीक है, अक्सर कई बार हमने देखा भी है कितने लोग कहते हैं, मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, ये पूरी मनोविज्ञान की बात है, आप अपने संस्कार के विरुद्ध जाएंगे भय पैदा होगा और भय का दबाव आपके लिए ठीक नहीं है, तो आपका जो संस्कार है वो संस्कार अनुसार चलने में कहीं भय नहीं। तो पहले विधि का अध्ययन आप संस्कारवान होने और किसी की नकल न करें, फिर संस्कार के बाद विधि का अर्थ आएगा नीति नियम। हम हिंदू हैं लेकिन नीति नियम तो कुछ होगा, हम संस्कार से हिंदू हैं लेकिन नीति नियम से भी हिंदू हैं कि केवल काने मात्र वाले हिंदू या मुसलमान, तो विधि का होता है नीति और नियम। आप अमेरिका जाइए, आप 25 वर्ष तक हिंदुस्तान में आप खुद चलाए कि आपका ड्राइवर गाड़ी चलाए, यहाँ के नीति नियम है कि भाई कीप लेफ्ट बाएं चलो, 25 साल के बाद आप खुद गाड़ी चलाए कि आपका ड्राइवर चलाया, आपका ड्राइवर जब आप अमेरिका 25 साल के बाद जाएंगे तो वहाँ लेफ्ट आप किस समय नहीं चला सकते, क्योंकि वहाँ की नीति इसलिए नकल नहीं, हमें वहाँ जाना है, उनके नियम से चलना पड़ेगा। वहाँ आप तर्क नहीं कर सकते कि मैं अपने देश में 25 साल तक गाड़ी चलाता रहा, आप लोग क्यों रोकते नहीं। इसलिए हमारे किसी ने कहा जिस देश में जाओ भेद में जाओ हमें उनके नीति नियम का पालन करना पड़े, लेकिन पहले अपने नीति नियम का पालन कर उसको समझो। तो एक आम अर्थ होता है हानि या लाभ, जीवन या मरण, जस या अपजस। आप विधि से चलेंगे, संस्कार से चलेंगे, जस मिलेगा। आप अपने संस्कार के विरुद्ध जाएंगे, गलत करेंगे तो आप जस मिलेगा। और इतना तो विवेक होना ही चाहिए हर आदमी में, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं। और अंदर से अगर आवाज आ जाए कि मैं गलत कर रहा हूं तो उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं। और उसकी पहचान यही है कि जब संस्कार के विरुद्ध कर्म करेंगे तो मन में भय है, और भय संकेत दे रहा है कि आप अपने संस्कार के विरुद्ध जाकर कर्म कर रहे हैं और उसका परिणाम अच्छा नहीं। अब जो आपको बताना चाहता हूं, इसलिए आप संस्कारवान बने, हिंदू हैं कोई तरह हिंदू बने, मुस्लिम है पूरा मुस्लिम बने, ईसाई है पूरे ईसाई बने, और अपने में रह करके दूसरे का आदर। आपका अपना विधि विधान है, मेरा अपना है। किसी देश में जाइए तो उनकी उनके बनाए हुए नीति नियम का पालन करना पड़े, वहां आप हट नहीं कर सकते। और भारत के नियम को अमेरिका में लागू भी नहीं कर सकते, इतना विवेक इतनी समझ होनी चाहिए। इसके बाद जो विधि है हमारी, जब हम सातवें महीने के थे प्रथम संतान, मान लीजिए मैं तो कह पांचवी हूं, लेकिन हमारे यहां प्रथम संतान का सातवें महीने में श्रीमंत क्यों होता है, वो संस्कार के बाद। कि अगर हमारी पहली संतान लायक निकल गई तो उसकी छत छाया में, क्योंकि पहली संतान को पुत्र को पिता का जबरदस्त सहायक माना गया, राइट हैंड ऑफ द फादर। और प्रथम पुत्र अगर नालायक निकल गया दुर्योधन की तरह तो बाकी सब भी नालायक ही निकले। इसलिए प्रथम संतान का सेवन, तो उसमें भी संस्कार के बाद, कि संस्कार सातवें महीने से माँ जो सुनती है देखती है आने वाले बच्चे पर असर करता है। वो भी एक विधि है, माननी चाहिए, आज विज्ञान में मानता बड़ी सुंदर विधि है भारत। माता पिता से बढ़कर हितैषी दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए प्रथम 3 साल बच्चे पुत्र या पुत्री माँ के पास रहना, पिता के पास रहना बहुत जरूरी है। इसके बाद माता पिता के साथ रहते हुए अच्छे गुरु अच्छे ब्राह्मण कहीं गायत्री मंत्र की बात है, कहीं शिव मंत्र की बात है, कहीं विष्णु मंत्र की बात है, कहीं बाइबल है, कहीं कुरान है। मुस्लिम में 2.5 साल के बाद ही मदरसे भेजते हैं, चर्च में 5 साल के बाद भेजते हैं, हमारे यहाँ भी है कि 2.5-3 साल के बाद बच्चों को जहाँ जिस समाज के हैं वो मंत्र सिखा देना। गायत्री मंत्र है, शिव मंत्र है, विष्णु मंत्र है, हनुमान चालीसा का पाठ है, माँ का मंत्र है, देवी का मंत्र है, उससे एक संस्कार बनता है, हमारी बुद्धि निर्मल बनती, एक व्यवस्था देखिए पोस्ट की, आपने पत्र लिखा, बंबई लिखा के दिल्ली लिखा के अमरीका लिखा के न्यूजीलैंड के कनाडा, आपका मित्र आपका पुत्र आपके रिश्तेदार में, आपने पत्र लिखा सब समाचार दिया, एक व्यवस्था है पोस्ट ऑफिस की, लेटर बॉक्स में उस व्यवस्था के अनुसार आपने अपना पत्र डाला, आगे की व्यवस्था सरकारी है, एड्रेस ठीक है, विधि ठीक है तो पत्र लेट हो सकता है लेकिन पहुंचेगा। इसी तरह से भारतीय संस्कृति में जो विधि है, यज्ञ का होना, चाहे वो गायत्री मंत्र का कि हनुमान जी का, तिलक रुद्र है, अति रुद्र है, विष्णु याग है, ये जो भी है ये विधि है। अब ये विज्ञान भी मानने लगा कि जो लोग पवित्र हैं शुद्ध है, जिनके मुख में प्रभु का नाम है उनमें शक्ति है, उनके द्वारा जब विधि कराते हैं तो उसका प्रभाव होता है। विज्ञान इसको कैसे कहता है, गन आपके पास, बंदूक आपके पास भी है, बंदूक दूसरे के पास, बुलेट आपके पास भी है, बुलेट उसके पास भी है, गोली, लेकिन आपकी लाइफ है उसके ब्लैंक फाइल, आपके पास जो बुलेट है उसमें ताकत अंदर है, जिस निशाने पर गोली छोड़ी जाएगी काम करेंगे, एक दूसरे के पास है ब्लैंक फायरिंग, हाई फायरिंग, लेकिन अंदर कुछ नहीं है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। तो अच्छे व्यक्तियों के द्वारा हम आप सब ज्ञान की कथा सुनते हैं, समय समय पर यज्ञ होता है, तो विज्ञान भी मानने लगा कि जो लोग पवित्र हैं शुद्ध हैं, जिन्होंने भगवान का नाम जपा, जो पूजा पाठ में रहे, तो जैसे आज आपके मान लीजिए 4 लड़के हैं, पहला लड़का अगर प्रोफेसर है तो ब्राह्मण, दूसरा लड़का मिलिट्री में है तो क्षत्रिय, तीसरा लड़का व्यापार करता है बिजनेस करता है वो वैसे, और मान लीजिए चौथा लड़का आपका ड्राइवर है जैसे फर्स्ट क्लास पट्टा वाला है, तो शूद्र, शूद्र नाम नीच नहीं है, पहले बांटा गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये कास्ट सिस्टम। अब है क्लास सिस्टम, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, लेकिन मेरे ही 4 बच्चे हो सकते हैं कर्म से, इसलिए हम आदेश से कहते हैं हर बालक को बालिका गार्गी मैत्रेयी भी नारी से जबरदस्त विश्वास। ये तो कुछ लोगों ने हम पर राज किया सबसे बहुत ही डिवीजन करके हमें आपको बनवा। नर नारी बेटा बेटी सब के लिए हर बेटा हर बेटी ब्राह्मण की तरह विद्वान बने, अपना अच्छा बुरा सोचे, उसके अंदर विवेक का जागरण होना जरूरी है। छत्री की तरह संयमित है, मैं विद्वान हूं लेकिन अपने रक्षा नहीं कर सकता, विद्वता किसका हूं। मैं विद्वान भी हूं संयमी भी हूं लेकिन मैं स्वयं भूखा मरता हूं तो परिवार समाज की क्या सेवा। तो वैश्य कर्त है हर बेटा बेटी ब्राह्मण की तरह विद्वान हो, क्षत्रिय की तरह संयमी बने और वैश्य की तरह अपना उपार्जन करे। वो डॉक्टर है कि इंजीनियर है, टीचर है, जो कुछ भी, लेकिन अपने पैर पर उपार्जन होना जरूरी है, परोपजीवी अपने। और शूद्र का है अपनी सेवा स्वयं, अपनी सेवा परिवार की। या विचार तो करो, बड़े प्यार से कर, ये चारों बातें हमारी ऋषियों ने हमें कहा, हर बेटा बेटी विद्वान हो, संयमी हो, स्वयं उपार्जन करे, पर उद्यमी न रहे, दूसरे के सामने हाथ न फैलाए और जरूरत पर खुद की और परिवार की सेवा करे। आप लोगों में से काफी लोग इंग्लैंड अमेरिका देखे होंगे, कनाडा जापान भी देखे होंगे, वहां आप उनसे बातचीत कीजिए, मुझे मौका जो मिला मैंने देखा अनुभव किया होगा, चाहे अमेरिका की बात करूं, इंग्लैंड की करूं, कनाडा की, जापान की, डेनमार्क की करूं, कि स्विट्जरलैंड की करूं, वहां हर व्यक्ति विवेक से काम ले, कोई कुछ कहिए लेकिन जब तक वो उसे समझ के स्वीकार नहीं करेंगे तब तक ब्लाइंड फेथ नहीं, दे हैव फेथ बट नॉट ब्लाइंड फेथ, यू से आर दे एक्सेप्ट नॉट, इफ दे आर कन्विंस्ड देन एक्सेप्ट। यही मैं आपसे कहूँगा, कोई कुछ बोले लेकिन अपना भला बुरा तो सोच लो, जो अपना भला नहीं सोच सकता दूसरे का भला क्या करे, जो स्वयं तैरना नहीं जानता दूसरे को कैसे सिखाएंगे, जो स्वयं जागा हुआ नहीं है दूसरे को कैसे जगाए। तो हर बेटा बेटी हर नर नारी हर व्यक्ति अपना भला बुरा तो विवेक रखे, वहां हर व्यक्ति उपार्जन करता है, लड़का लड़का भी पेपर बेचेगा, अगर नहीं लाएगा तो मंदिर का लड़का भी पत्र तो आप जिसके लायक है वो काम करें तभी समाजवाद आए। एक आदमी कमाए दस आदमी खाएंगे तो समाजवाद नहीं है। समाजवाद का हर व्यक्ति स्वयं अपना उपार्जन करे, देने लायक बने। मैं ब्राह्मण हूं विद्वान हूं, मैं संयमी हूं लेकिन उपार्जन नहीं करता, भीख मांगता। मैं साधुओं में भी सारी दुनिया तुम्हारी आरती करेगी लेकिन तुम एक अच्छे विद्वान है, साधु संयमी एक तपस्वी तो हो जाओ। भीख मांगने वाले को भिखारी कहा गया, साधु नहीं कहा गया। इसलिए हमारे यहां संत का अर्थ होता देने वाला, मांगने वाला नहीं। महात्मा का अर्थ होता जिसकी आत्मा इतनी महान है कि सबको स्वीकार कर, आत्मा तो सभी है लेकिन कालांतर मत बदलते बदलते हम सब बिहारी में। और अक्सर मैंने अपने शिष्यों से कहा है, आपके द्वार पर कोई आए, भूख लगी हो तो रोटी जो कुछ है खिला दो, पैसा मांगे ये तो समझ के देना। कई बार उसका दुरुपयोग हो जाता है, कितने लोग कपड़ा बेच देते पैसे से कुछ और कर। इसलिए कपड़े और पैसे समझ के देना। लेकिन द्वार पर कोई आ जाए तो उस समय वो ये नहीं कहे कि मुझे ये खाना, बच्चे खा लिए आप खा लिए, जो बचा है वो दे सकता वो सब। तो मैंने देखा भ्रमण काल में कि ये लोग इतना विवेक रखते हैं कि मेरा मेरे देश का कोई नुकसान हो, जापान के गोदान दूंगा, टोक्यो का बहुत संक्षेप में बता दूं, हमने केले का वहां सुना था लेकिन आपको बता रहा हूं, सड़क पर चलते समय जापान केला बहुत बढ़िया होता है, ग्रोसरी है वहां से हमने केला लिया, सड़क पर खाते समय मैंने स्वयं केले के छिलके फेंका, एक जापानी उसे उठाया और थोड़ी दूर पर जाकर जो गार्बेज होता है रख दिया, मैंने उससे पूछा, कहते आप हिंदुस्तान से आए हैं, यहाँ की पुलिस यहाँ कैमरे सब फिट हैं, अगर आपका चित्र एक कैमरे के अंदर आ जाता तभी 5 मिनट पुलिस आती और 1 दिन तक दंड करती, पैसा नहीं लेते, 1 दिन की कैद, और आप घबरा जाते कि भाई केले का छिलका फेंकने पर 1 दिन की कैद हुई तो आप अपने देश से आए हैं, यहाँ कुछ मनी सर्कुलेट करेंगे, हमारे देश का अपमान नहीं हो आप, उसका एक विवेक है कि मेरे देश का अपमान न हो, ये भारत से आए, भारत में तो सब जानते हैं सब फेंकते हैं। तो मेरी बात समझ जाइए कि एक जापानी ने उठा के गार्बेज में रख, मैं वो देखना चाहता लेकिन आपका अपमान नहीं किया, और देश का पुलिस आएगी सख्त है, किसी की सुनती नहीं, 1 दिन की सादा कैद करेगी, सूरज डूबने के बाद छोड़ेगी, ये भारतीय घबरा जाएगा वापस जाएगा मेरे देश की बुराई करेगा, हम अपनी भी इज्जत करें और आपकी भी करें देश की भी करें, कितना तो विवेक होना चाहिए। ये जापान की बात बताऊं, मेरे पास घड़ी थी, वो सुना जो था वो सब एक परीक्षा के तौर पर, मैं दुकान पे गया फीचर से, मैंने कहा हाउ मच आई हैव टू पे, कार नथिंग, यू आर इन माय कंट्री आई वेलकम, हमारे यहाँ तो घड़ी खराब हो ना तो पूरी घड़ी के पैसा ही लेते दिल्ली पर, नई घड़ी लेने पर। एक बात बता विकी, मैं हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ, नहीं नहीं नाउ यू आर माय गेस्ट आई वेलकम, कुछ नहीं इसको मामूली बात टेक इट, एक बात बता। तो इतना तो विवेक रखिए, मैं अपनी बात बताऊं, मैं भगवान को मानता हूं, मंदिर में भी जाता हूं, लेकिन अभी लोग कहते क्यों नहीं जाते, मैंने कहा भगवान से कहा वहां पर ही आ करो, लोग वहां इतना परेशान करते हैं कि मंदिर में जाने का मन ही नहीं, कहा प्रभु आप आ जाओ, अरे बस पूछो और वहां जाइए, इतना आदर सत्कार करेंगे बार बार जाने का मन होगा, इतने शालीनता से बात करते हैं, ये करते, इतना विवेक ये ब्राह्मण का, संयमी अपने ढंग से है बोलने में चालने में ट्रेन में व्यवहार में बहुत ठीक है, हर व्यक्ति उपार्जन कर, और जरूरत पर तो वहां का राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर भी अपना टेबल अपने हाथ से साफ कर, परेशानी वहां सिर्फ यह है तलाक के कारण डिवोर्स के कारण फैमिली लाइफ थोड़ी दिक्कत, अब उसकी तुलना करूं हम लोग पारिवारिक ढंग से सुखी हैं, अपने घर में बहुत आनंद से रहेंगे, लेकिन सड़क पर ठीक नहीं चले, वो लोग सड़क पर ठीक है घर में ठीक नहीं है, कब तलाक हो जाए, कब ये हो जाए, फैमिली लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ हमारी फैमिली लाइफ वो लोग स्वीकार करें, उनकी नेशनल लाइफ हम स्वीकार करें तो वो भी सुखी हो जाए और हम भी। हमारे पास फैमिली लाइफ है लेकिन नेशनल लाइफ, अरे ट्रेन में भी पैर फैला के बैठे वहाँ कोई आप तो रहे देखे कितना जो है। एक बात किस तरह से, तो ये मैं आपसे कहूँगा अपने को तो ठीक रखने के लिए अपना तो सम्मान करो, अपनी संस्कृति का करो, अपने संस्कार का करो, अपने प्रीस्ट, अपने मौलवी, अपने ब्राह्मण का करो, अपने माता पिता का। तो ये जो हम लोग विधि आपको बताते हैं भाई गंगा की पूजा करो या ये विधि करो, ये सब पूरी वैज्ञानिक है। इसका जबरदस्त असर आपके पिंड पर और ब्रह्मांड दोनों पे होता है। सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, एक शायर की बात मुझे याद आती है, नाम इस समय भूल रहा है, तो करीब जब मैं पढ़ता था 51-52 की बात है, तो मुशायरा हुआ इलाहाबाद में तो बहुत होता रहता था। एक शायर की बात, शायर का नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपके बगीचे में गुलाब का फूल देखने के लिए आया, उसकी सुगंध से प्रभावित हुआ, लेकिन आपने कहा कौन सा फूल खरीदोगे, मैंने कहा क्या सुगंध भी बाजार में बिकती है, कहा सुगंध बाजार में तो नहीं बिकती लेकिन फूल यहाँ बिकता है, अगर खरीदना है तो पैसा दो टाइम निकल जाओ। तो आजकल सुगंध देने में भी लोग बाजार की बात करते हैं, मतलब पैसे की बात करते, उसका कहने एक विचार बताता, आपकी मानवता की सुगंध आप चाहे कहीं के भी भारत के किसी प्रदेश में जाए लेकिन भारत की सुगंध पूरे विश्व की। मार्टिन लूथर किंग ने गांधी की वो प्रशंसा की है, बस पूछो मत, उसको भी अंत में गोली लगी। उसने इतना ही कहा अगर पूरा देश शांति चाहता है तो गांधी मार्ग से चलो, और उसने अपनाया और भी को लिखा। तो गांधी की सुगंध केवल यहां तक नहीं, पूरे विश्व तक रही। इसी तरह विवेकानंद हुए, रामकृष्ण हुए, रमण महर्षि हुए, कबीर हुए। मैं लेमन यूनिवर्सिटी में गया ह्यूस्टन में, तो वहां के अमेरिकन बच्चों ने मुझे अद्वैत बात पूछा, शंकराचार्य जी का पूछा, अद्वैत पूछा, बात ताजुब करो। मैंने कहा ये अमेरिकन बच्चे द्वैताद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, शंकरवाद क्या है, क्योंकि जिनका संबंध अमेरिका से उनको मालूम होना चाहिए कि वहां के बच्चों को भी किसी एक देश की सांस्कृतिक आधार पर फिलॉसफी लेनी पड़ती। और हिंदुस्तान के कॉलेज में जाता हूं तो इमर्सन की बात, थोरो की बात पूछ रही, वो जानते नहीं शंकराचार्य जी किसका। एक बात कर, एक हंसी की बात सुनाओ, 6-7 साल पहले की बात है, किसी ऑफिसर के यहाँ मेरा काम था, मेरे गुरु ने कहा कि जरूरत पर बटाटा खरीदने जाते हो, पालक खरीदने जाते हो तो शिष्य के यहाँ भी जब जरूरत हो जाना बुलाना। मैंने कहा बात अच्छी लगी, तो मेरा कुछ काम था, सुबह पहुंच गया, दिसंबर का महीना, तो ऑफिसर ने कहा स्वामी चाय पियोगे, मैंने कहा पियूंगा, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई चाय के साथ तुलसी डालना। तो उनका 4 साल लड़का कहता है दुकान तो 9 बजे खुलती है पापा, अभी काम तुलसी मिले, तुलसी बल विष्णु का, तो लोग गुटका के नाम मालूम है लेकिन तुलसी के नाम एक बात नहीं। जब विचार कीजिए हम भारत वाले अभी आज के बच्चे तुलसी कहिए तो गुटका या तुलसी एक बात नहीं। जब आपकी तुलसी अमेरिका जा रही कैप्सूल बन रहा एक बात नहीं। तो वैज्ञानिक बात क्या है, आज हमारे पास मोबाइल है, मैं बड़ौदा बात करूं, सूरत बात करूं, अमेरिका बात करूं, लंदन करूं, करता ही रहता हूं, उसकी व्यवस्था क्या है? एक खास नंबर है, अंतरिक्ष में जाएगा, टावर पे जाएगा, वहां मिलेगा, दोनों बातचीत। इसी तरह से आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप जो सोचते हैं किसी और को पता चले कि न चले, लेकिन वो अंतरिक्ष में जा करके हजार गुना ताकत लेकर फिर आपके पास ही, आप यहां बैठे बैठे, आपका लड़का है कि लड़की है कहीं भी है, आप यहां बैठे बैठे प्रेम से बोलिए कि बेटा तो सुखी रहा, उस समय 10 मिनट के बाद फोन करके पूछे कि हाँ मम्मी तो याद आ रही, पापा याद आ रहे। मोबाइल से तो बात हो जाती है, मन से भी हो जाती है, वी टॉक फ्रॉम माइंड टू माइंड। और किसी दुश्मन की कोई बात हो भूलिए, या वो आपके लिए बोले तो आप भेजे, कई बार लोग मुझे महाराज जी कभी कभी बहुत बेचैन हो जाता, तो पहले पूछता हूँ तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें गाली तो नहीं दे रहा? कहा हाँ कभी कभी देता है। मैंने कहा उसको कभी कभी खिला दिया करो, इसलिए हमारे यहाँ के घर में कोई अच्छी चीज बने तो पहले, नहीं तो सूंघते रहता क्या, फिर गालियां देगा, और उसका बच्चा आ जाए तो जरूर देता, नहीं तो मम्मी कहेगी जा। तो हमारे यहाँ जो थोड़ी वाड़की बनाकर पड़ोसी को देते, इसीलिए कि हमारे लिए बुरा, आमंत्रण भी देना, मेरे पास लोग आते हैं, मैंने कहा कोई आएगी नहीं, लेकिन तुम आमंत्रण दो, कम से कम तुम्हारा बुरा तो नहीं। हाँ ये पहले ही से मुझे काट दिया था इसको भी, इसलिए हमारे यहाँ कभी नए साल पर, कभी दीपावली पर मिलने की बात, एक भाई लंबे समय तक दुश्मनी, इसलिए सर्वे बहुत सुखने की बात है। डॉक्टर टाइम बताइए, नहीं आधा घंटा आप भाई भगवान के रूप में बैठे हैं तो भगवान की इशारा, तो इन्होंने आधे घंटे बोलने के लिए कहा, आप सबसे बात तो किया, मैं बोलता रहा आप सुनते रहे, कितना सहन कर। तो हानि लाभ जीवन भरण जस अवजस विधिहान, विधि का अर्थ है संस्कार, विधि का अर्थ है ठीक से कर्म करना, विधि का अर्थ है विवेक, विधि का अर्थ है संयम, विधि का अर्थ है कि अपनी सेवा करना, ये सब ठीक रहोगे तो एक विधि का अर्थ है परमात्मा, आप ठीक है तो परमात्मा भी सब ठीक। मैं गेहूं विधि से किया तो परमात्मा गेहूं ही देगा, मैं अपनी हथेली पर 1 से 10 गेहूं नहीं कर सकता, लेकिन परमात्मा की धरती में विधि विधान से अगर गेहूं डालूंगा तो 1 से, इसलिए विधि विधान से श्रद्धा विश्वास से भगवान का नाम लो, पूजा करोगे, पाठ करोगे, तो जैसे 1 गेहूं 10 बन जाता है, ऐसे 1 मंत्र 10 गुना शक्ति लेकर के आपको फायदा। लेकिन सड़ा हुआ गेहूं अगर जमीन में डालोगे तो भी सड़ा हुआ मन व्यर्थ बेकार का शंकाशील, अगर मन होगा तो उसमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो हानि लाभ जीवन मरण क्या समझे, आप विवेक को अपनाएं, आप संयमी रहें, अपना उपार्जन खुद करें, अपनी सेवा अपने परिवार अपने देश की यथायोग्य सेवा करें, इतना करने पर भी अगर कुछ हो जाए तो कोई पिछले कर्म का फल, इसलिए बुरा मानने की कोई पता नहीं किस जन्म में क्या होगा, कितना भी करोगे कितने भी अच्छे रहोगे लेकिन कर्म किसी को छोड़ने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज यही आपसे कहता हूं, आने वाले कल की बात नहीं करता, जो कल बीत गया वो छोड़ो, लेकिन हर क्षण विवेक से सुनो, जो सुन रहा हूं क्या मेरे धर्म का है, मेरा संस्कार है, क्या मेरी प्रगति हो रही है, क्या मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है, तो सुनो, इससे उपार्जन होगा, कोई गलत रास्ता तो नहीं होगा, कहीं मर्यादा के बाहर तो नहीं जाएंगे, इसलिए हर क्षण पहले सुनो, सुनने के बाद विचार करो ये देखने लायक है कि नहीं, बोलने लायक है कि नहीं, चलने लायक, तो सबसे पहले सुनना, इसलिए हमारे यहाँ सबसे पहले यज्ञ जो है सुनने का ही होना है, श्रवण का ही। जब हम आप जन्मे तो पहले सुने देखे फिर बोले फिर चले, इसलिए हमारे यहाँ जो सत्संग की बात है इसे सुनो फिर विचार करो, देखने लायक है, बोलने लायक है, चलने लायक, अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसे सुनना जरूर। देखिए रामायण की बात, वन देवी करके लवकुश को सिखाया गया, लक्ष्मण को क्रोध आया, राम ने कहा हैं तो बच्चे मेरे राज के अंदर, मैं इस समय राजा राम हूं। पहले सुनो तो लक्ष्मण, अगर मैं सुनूंगा नहीं तो न्याय क्या करूंगा, लेकिन सुनने के बाद ही निर्णय करेंगे क्या सच है, कितनी जबरदस्त बनोगे, मैं आपसे कहूं कोई भी सुनाए सुनो, लेकिन निर्णय समझ के लेना, ये नहीं कि सुनते ही निर्णय, पहले सामने वाले सुनो तो सही क्या बोलता है। कई बार मैंने देखा भाई भाई की लड़ाई है, भाई बहन के बहन का, पहले सुनो तो सही, तुम पहले ही क्यों गलत निर्णय ले लेते हो कि नहीं जाना ये करना। पिछले साल की बात है, भरूच की बात, एक जबरदस्त वकील एक जबरदस्त डॉक्टर, दोनों भाई डॉक्टर मेरे शिष्य, वकील मुझे अच्छी तरह मानते हैं जानते हैं। डॉक्टर लड़की की शादी की बात आई, मैंने कहा भाई को आमंत्रण में मिल जाओ, स्वामी जी वो तो 10 साल से बोलते नहीं, मैंने कहा गुरु जी ने भेजा, मेरा अपमान किया तो मैंने कहा मेरा होगा, तुम सुन जाओ, गए स्वागत हुआ हुआ, फिर पता चला कि धोबी लोग बन के कैसे भाइयों को लगा, मैंने कहा पहले जाओ तो आमंत्रण, पहले सुनो तो क्या बोलता है, मैं भेज रहा हूं, तो मिलने के लिए दो भाई तैयार हैं, लेकिन कोई पिछली बातें बीच में दीवार बन के आ जाती है, तो हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं, जिस दीवार को तुमने अपने हाथ से बनाया है उसे पांव से तोड़ दो, जिस दीवार को आपने अपने हाथ से बनाया उसे दीवार अपने आप नहीं बने, आप हमारे बीच में दीवार या तो मैं बनाया या तो हाथ से मत तोड़, ऐसे ठोकर मारो और भाई से मिलो, फिर अगर वो धोई दीवार बनाता है तो मैं देखता हूं, तो यही मैं आपसे जहां मिलने की बात आई एक फर्ज है, तुम छोटे भाई भी बड़े भाई के पास जाओ, करेगा अपमान तो मेरा होगा, फिर देखूंगा कोई अपमान मिले, सब साथी हुए सब कई जगह मैंने देखा, हमारे गुजरात का अमन है, तेरा काम कागला ले गया तो पहले काम देखेगा कागला के पीछे दो, ये एका दिया तो इसलिए काम कागला ले, बोलने दो दुनिया, तो विधि से आप चले, विवेक संयम उपार्जन और सेवा, ये चार चीजें अपनाने से ये चार चीजें राम में थी, किसमें भी महावीर में भी पैगंबर में भी है जैसा क्राइस्ट में, ये आप अपनाएं, फिर एक आप उत्तम कोटि के विचारक चिंतक और आदमी बनें, लेकिन फिर भी जैसा क्राइस्ट को फांसी के तख्त पे जाना पड़ा, किसी को गोली मारी गई, किसी को पत्थर मारा गया, किसी को समुद्र में, ये तो चलता रहे, इसका ये नहीं है कि आप बुरे हैं इसलिए लोग पत्थर मारते हैं, फूल जब फैलेगा तोड़ा जाएगा, अच्छा भी फूल आप तोड़ेंगे मंदिर में चढ़ाएंगे और सड़ा फूल तोड़ करके वहीं फेंक देंगे, तोड़ा तो दोनों जाए लेकिन अच्छा फूल भगवान के चरणों में चढ़ेगा, और बेकार का फूल तोड़ के तो हम अच्छे लोग तोड़ेंगे। बाबर के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारता है तो आम के पेड़ पर जहां कोई फल है। महाराज जी लोग मुझे पत्थर मारते हैं, तो कोई फल है अच्छा आदमी इसलिए पत्थर मारते हैं, तो बाबर नहीं क्या कुछ चिंता कर ऐसा समझ। कई बार यहां तक है भगवान बुद्ध की कहानी, भगवान बुद्ध कहते तेरे को और जो किसका ना गाली खूब दे दे, उसने कितना पैसा गाली देने के लिए, बहुत पुरानी कावन दरभंगा की बिहार। भगवान बुद्ध हंसने लगे, मैं इतना लायक बना कि कोई मुझे गाली दे तो उसको भी दो टाइम का पैसा मिलता है, तो भाई तू और गाली दे दे, चार दिन का पैसा ले, मैं होता तो क्या कर, इन वजन जरा लगाओ थप्पड़, फिर थप्पड़ लगा कर ना ले दो रुपया ले ले, इसका भी पैसा ले एक बात का। भगवान बुद्ध कहते हैं आपको कोई गाली देता उसमें उसका फायदा है, हंसो, बाकी ऐसे कोई नहीं देता। इसलिए हर चीज को आप इस ढंग सोचे चले, और भारत की संस्कृति में किसी का खंडन नहीं, जो भी चीज है बस विवेक से समझकर चलें, संयमी रहें, उपासन खुद करें, अपनी सेवा अपने परिवार देश की सेवा खुद करें, ये चार चीजों से आप एक उत्तम व्यक्ति बनेंगे, और उत्तम बनने पर भी परेशानियां आएंगी लेकिन उसका रास्ता निकलता रहेगा, समाधान होता रहेगा। इसलिए हानि लाभ जीवन मंजर समझस विद्या, ये सब कुछ आपके हाथ में है, आपके संस्कार में है, और जो कुछ करेंगे उसका फल विधि परमात्मा आपको देगा। गेहूं लगाओ गेहूं मिलेगा, चना लगाओ चना दोगे, वो नहीं कहता गेहूं लगाओगे क्या, यथा कर्म तथा लाभ। आइए विवेक से समझ करके संयम से उपार्जन करते हुए अपने कर्म को करें, वो परमात्मा एक से दस गेहूं बनाएगा, हमारा एक अच्छा कर्म दस गुना बनकर हमारे सामने, और एक बुरा भी दस गुना बनकर आएगा। बाबर का पेड़ भी कितना कांटा था, तो ये आप रखें कि हमें दस गुना नहीं बना सकता लेकिन मेरा कर्म के हिसाब से वो अच्छा है बुरा दस गुना बनाता। आइए इस पर विचार करें और परमात्मा की कृपा की अनुभूति करें कि हर क्षण आनंद से रहते हुए कर्म करते हुए जिए और सबका भला सोच। हरि ओम। अभी क्या टाइम है?
11 बजे। 11 थोड़ी
Yeah.